In a lot yesterday. We took in a lot of information yesterday.
और कल हम बहुत सारे ऐसे information लिए हम लोग.
And just as the writer of Hebrews does, we're going to keep going and raising the bar.
और इब्रानियों के लेखक जैसे हमें चाहते हैं उसी तरह हमारे लिए हम धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं.
We have been hearing a number of questions about Melchizedek.
और हम बहुत सारे सवाल को हम पूछे कि मेलकिसेदेक के बारे में.
And today is the day where we find out about him.
और आज वो दिन है जो मेलकिसेदेक के बारे में हम सीखेंगे.
The author has shown how the Lord has fulfilled the type of Aaron.
और ये लेखक कैसे कहते हैं यहाँ पे कि कैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह ने और उस चीज को पूरा किए.
And now he's going to explain to us how he is a priest at all.
और वो हमें अभी विस्तार से बताएंगे कि वो कैसे एक याजक हुए.
Remember each of the pictures of the Old Testament.
याद रखिए पुराना नियम का हर एक छवि.
Are not enough to fully give us the picture of Christ and His work.
और उतना यानी sufficient नहीं है यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए.
And so there's aspect of Aaron's priesthood that are fulfilled in Christ.
और इसीलिए कि हारून का जो याजकत्व था वो यानी यीशु मसीह के याजक के लिए पूरा किया गया है.
We're not going to look at all of the ways, but to think of his garments and think of his actions and going to the holy place and the holy of holies.
हम पूरी पूरा विस्तार से नहीं देखेंगे, लेकिन उसके याजक का जो वस्त्र होता था उसको याद कीजिए और वो कैसे पवित्र महापवित्र स्थान जाता था उसी उसको याद कीजिए.
And the writer of Hebrews is telling us that Jesus is a priest like Aaron.
और इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि यीशु मसीह हारून के जैसे याजक थे.
But now he's going to describe how Christ's priesthood is after Melchizedek.
लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि यीशु का जो याजकत्व है वो मलकीसेदेक के साथ कैसे जुड़ा हुआ है उसी के जैसे आते से है.
And how because his priesthood is after Melchizedek, it's a greater priesthood than Aaron's.
और उसी की वो याजक मन्ना कैसे मसीह मलकीसेदेक के तरह हो गया और उसी के साथ वो विस्तार से यहाँ पे बता रहे हैं.
This is not that it's a hard, as in it's hard for us to hear sort of piece of scripture.
और ये हमारे लिए बहुत कठिन समय होता है, कठिन हम यानी शास्त्रांश से कुछ लेके हम जो सोचते हैं याद करते हैं समझने के लिए.
But it can be challenging for us to comprehend it.
परंतु ये हमारे लिए आह्वान देता है कि ताकि हम लोग उसे समझ सके.
Remember, for the Jews, not only would it be hard to comprehend.
और याद कीजिए कि यहूदी लोग जो थे वो खाली वो वचन को लेके व्याख्या नहीं करते थे.
It would be hard for them to hear.
लेकिन वो उनके लिए समझ से भी बहुत परे था वो.
They thought of the priesthood of Aaron as the pinnacle of their Judaism.
और वो सोचते थे कि हारून का जो याजकत्व है सबसे बड़ा है.
But this will answer their question, how can the Messiah be a priest?
और यहाँ पे वो सवाल का उत्तर मिलता है कि कैसे मसीहा याजक बन सकता है.
So we're going to go ahead and have someone read chapter 7.
और इसीलिए हम इब्रानियों के 7 अध्याय को विस्तार से पढ़ेंगे कोई.
In this session we're going to have someone read it in Hindi.
और यहाँ पे आज वो सेशन में कुछ लोग हिंदी में पढ़ेंगे.
And the next session we'll have someone read it in
और अगले सेशन में उसको उड़िया में कोई पढ़ेंगे.
यह मलकीसेदेक साले का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है. जब अब्राहम राजा को मारकर लौटा जाता था तो किसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी. इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवां अंश भी दिया. यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म राजा और भी साले अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है. अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दसवांश दिया. लेवी की संतान में से जो याजक कपट पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से चाहे वे अब्राहम ही की देश में हो व्यवस्था के अनुसार दसवां अंश ले. पहले जो उनकी वंशावली में का भी ना था अब्राहम से दसवां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी. इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है. और यहाँ जो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं पर वह वही देता जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दसवांश लेकर अब्राहम के द्वारा दसवांश दिया, क्योंकि जिस समय मलिकसिदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती हो सकती जिसके सहारे लोगों की व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी मलिकसिदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति करना कहलाए, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलिकसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है जो शारीरिक आज्ञा के व्यवस्था के नहीं व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि मलिकसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक पर या शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया जिसने उसके विषय में कहा प्रभु ने शपथ खाई और उससे फिर न पछताएगा कि वह युग नियुक्त याजक। इस प्रकार इस एक उत्तम वाचक का जामिन है, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु ने रहने नहीं दी और यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अतः ऐसा ही याजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो। उन महायात्रियों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है।
सो मेलकिसेदेक,
यहाँ पे हम मलकीसेदेक के बारे में जानते हैं।
The writer of Hebrews gives us quite a bit of information.
और इब्रानियों के लेखक कुछ ही विषय में वो टिप्पणी देते हैं मलकीसेदेक के बारे में।
In fact, he gives us more information than Genesis does, where the account is found.
लेकिन वास्तव में जहाँ पे उत्पत्ति में लिखा जाता है इसके बारे में उससे कहीं ज्यादा यहाँ पे वो बताते हैं।
So turn to Genesis chapter 14.
और यहाँ पे हम लोग उत्पत्ति 14 अध्याय को निकालेंगे।
As you're turning there, just listen to what I have to say.
और यहाँ पे जब आप जाते हैं, आप ध्यान से सुनिए कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ।
Abraham had been living in the area of what we think of as modern day Israel.
और आज के दिन को जो हम इज़राइल कहते हैं, इब्राहिम वहाँ पे रहता करता था।
And he and his nephew Lot had a great amount of sheep, of animals, and wealth.
और वो और लूत उसके पास बहुत सारे ऐसे मेष और पशु थे।
Those that were tending the animals of Abraham and those that were tending the animals of Lot had gotten into strife as to who could have the best ground.
और इब्राहिम के दासों के बीच में और लूत के दासों के बीच में जो अपने पशुओं का वो ख्याल रखते थे उनके बीच में झगड़ा हो गया।
So Abraham says to Lot, you choose the ground you want. You take first.
इसीलिए इब्राहिम ने लूत से कहा कि लूत पहले तुम चुन लो तुम्हें कहाँ जाना है।
So Lot chose one way, and Abraham he decided to go the other way.
लूत एक जगह को चुना और इब्राहिम उल्टा चला।
By the way, this was a great mistake by Lot.
और लेकिन ये लूत का एक चुनना एक सही में गलत चुनना था।
If you're ever near someone who's close to the Lord.
और जो परमेश्वर के बहुत निकट रहता है
Try and stay close to them.
और वो परमेश्वर के पास ही रहता है
Don't leave.
और उनको छोड़ना नहीं है कभी
But Lot leaves and he goes towards the plain where Sodom and Gomorrah is.
लेकिन इब्राहिम को जो छोड़ के लूत चला गया उधर
It's now where we see the Dead Sea.
और जहाँ पे हम अभी देखते हैं मृतक वो सागर है
And eventually Lot begins to live in Sodom.
और वो लूत वहां पे सदोम में वो जाके बसने लगा.
He's paying the shepherds to take care of his sheep outside of the city, and he's living in the city.
और वो शहर में रहता था, लेकिन वो अपने दासों को, अपने पोशियों को चराने के लिए, यानी नगर के बाहर उनको बोला और उनको वो पेमेंट दिया करता था.
When you read chapter 14, you find out that there's a group of kings who have come and attacked Sodom and Gomorrah and the other cities near them.
जब 14 अध्याय को आप पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे राजा हैं जो सदोम के विरुद्ध में आए और आक्रमण किए.
They conquered them and they carried everybody away as a slave.
और वो लोग उसको नगर को हरा दिए और सारे लोगों को उनको बंधवाई में लिए.
They took Lot's family.
और वो लूत को ले लिए, लूत के परिवार को भी ले लिए.
And they took everything that everybody owned.
और जितने भी लोग वहां पे थे, सबको और उनका सब संपत्ति को लेके चले गए.
And Abraham hears about it.
और इब्राहिम ने ये सुना.
And Abraham asks God, should I do something?
और इब्राहिम ने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं क्या करूं अभी?
And so he takes 300 men of his household and they go and attack those kings.
तब वो अपने घराने से 300 लोगों को लेके वो राजाओं के विरुद्ध में वो चला.
And he defeats them.
और वो उनको हरा दिया.
And he brought back everybody.
और वो सबको वो लेके इब्राहिम ने फिर चला आया.
And he brought back all the goods.
और जो जितना भी उनके पास सामान था, सबको लेके चला आया.
And we read from, and I would like someone to read from verse 17 through the end of the chapter.
और जैसे हम यहाँ ने 17 से नीचे तक पूरा शेष तक जब पढ़ते हैं, 14 अध्याय 17 से नीचे जब पढ़ते हैं.
जब कदमलव उम्मीद और उसके साथी राजा को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा सावे नामक तराई में जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया. तब सालेम का राजा मलिकिसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और साग मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो. और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है. अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया. सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख. अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ दे रहा है उसमें से ना तो मैं एक सुध और न जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ. और जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आने एसपोल और हमें, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले.
It's an interesting topic.
और ये एक आनंद का विषय है, जानने वाला विषय है.
Because the focus is not Melchizedek.
और यहाँ पे जो मलकीसेदक जो है वो फोकस नहीं है.
The focus is what happens between Abraham and the king of Sodom.
ये फोकस का बात की, गौर करने का बात क्या है, वो इब्राहिम के और वो राजाओं के बीच में.
So the king of Sodom comes out and he meets Abraham.
और सालेम का राजा यहाँ पे आके इब्राहिम से मिलते हैं.
And Melchizedek comes and sees Abraham.
और मलकीसेदक आके इब्राहिम को देखते हैं.
Melchizedek is king of Salem.
और मलकीसेदक जो है, जो सालेम का राजा.
And he brings out bread and wine and feeds Abraham.
और वो इब्राहिम के पास वो दाख का रस और रोटी लाए और मछली लाए.
And he is a priest of God.
और वो परमेश्वर का याजक थे.
And it says in verse 19 that he blesses Abraham.
और 19 में लिखा जाता है कि इब्राहिम को आशीष दिए.
He says, "Blessed be Abram of the Most High God."
लिखा जाता है, परम प्रधान परमेश्वर की ओर से तुझे आशीष मिले.
Possessor of heaven and earth.
जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है.
And blessed be the Most High God, which hath delivered your enemies into your hand.
और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है.
And it says, and he gave him tithes of all.
और तब लिखा जाता है कि तब अब्राहम ने उसको सब का दशमांश दिया.
That's Abraham giving Melchizedek tithes of the spoils of the war that he just had victory in.
और जो इब्राहिम जो युद्ध करके जो उससे मिला था वहाँ पे उसके पास जो था उससे इब्राहिम ने मलकीसेदक को दशमांश दिया.
So a tithe is 10%.
और ये दशमांश जो है हमारे सारे आय से वो 10% है.
Because Abraham had victory.
क्योंकि इब्राहिम वो विजय पाया.
To the winner goes the spoils.
और जो चीज खोने वाला था उससे वो लेके आया.
That's the way it's been throughout history.
और ये इतिहास ऐसे ही बताता है.
And so by right, Abraham then owns all the people of those cities.
और इसीलिए अधिकार से और इब्राहिम को सारा चीज मिला वो नगर का.
And he owns all their goods.
और उनके सारे संपत्ति सामान उसको मिला.
And even the king of Sodom recognizes that.
और ये राजा भी वो चीज को देखा.
And he says, please let me have the people and you keep all the goods.
और वो सदोम का राजा भी कह रहा है कि सब लेके जाओ और ये सब छोड़ दो सामान कुछ लो बोल के.
And Abraham says no.
और इब्राहिम कह रहा है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए.
He says my God will prosper me, not the king of wickedness.
वो कह रहा है कि दुष्ट का राजा वो मुझे संपत्ति नहीं देगा या उसका संपत्ति नहीं लूंगा लेकिन मैं अगर बढ़ूंगा तो परमेश्वर की ओर से बढ़ूंगा.
So before he lets the people go,
और जब वो लोगों को वो छोड़ने लगा उससे पहले,
that's exactly what he does.
और ये वैसे ही वो किया.
And before he gives them back their goods,
और उसको उन लोगों को उनके संपत्ति देने से पहले,
he takes 10% of their goods,
और वो सारे संपत्ति का दशमांश वो लेके,
and he gives them to Melchizedek.
वो मलकीसेदक को दिया.
There's two things that we learn from this.
और यहाँ से हम दो चीजों को सीखते हैं.
That the writer of Hebrews is going to highlight.
और जहाँ पे इब्रानियों का लेखक इसे और भी ऊंचा उठाते हैं कहते हैं.
You can read throughout the Old Testament.
और पूरा पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं.
And you can find that the Father blesses the Son.
और हमें मिलेगा कि पिता पुत्र को आशीष दिए.
Abraham blesses Isaac.
और इब्राहिम इसहाक को आशीष दिए.
Isaac blesses Jacob.
और इसहाक याकूब को आशीष दिए.
Jacob blesses Joseph.
और याकूब यूसुफ को आशीष दिए.
It's always from the greater to the lesser.
और ये सब वो बड़ों से लेके छोटे तक वो आशीष आता था.
Melchizedek blesses Abraham.
मलकीसेदक इब्राहिम को आशीष दिए.
In the economy of God, Melchizedek is higher than Abraham.
और परमेश्वर के हिसाब से नजर में मलकीसेदक इब्राहिम से बड़ा है.
Otherwise, Abraham would be blessing Melchizedek.
और नहीं तो इब्राहिम को आशीष देना पड़ता मलकीसेदक को.
In the same way, you pay tithes to the one you want to honor.
उसी हिसाब से आपको दशमांश भी देना है आप जिसे honor करते हैं उसे.
The Jews were commanded in the law to pay tithes unto the tribe of Levi.
और यहूदियों को व्यवस्था में ये नियम दिया गया था वो अपने दशमांश लेवी गोत्र को दे.
Because they were the priests.
क्योंकि वो याजक थे.
And they said, and God said, I don't want the priests to be worrying about tilling the fields.
और परमेश्वर ने कहा कि मैं लेवियों को ये वो जाके बाहर खेत में काम करेंगे मैं ये नहीं चाहता हूँ.
I don't want the priests to be worrying about taking care of animals.
और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोग भेड़ बकरी का ख्याल रखें.
I don't want the priests to be worrying about those things. I want them to be worrying about my things.
और याजक वो ये बाहर के विषय और उनके जीवन के विषय में वो ध्यान ना रख के मेरे चीजों की मेरी सेवा करे.
So the command was that whenever you received something in Israel.
और ये व्यवस्था था कि आपको जब इज़राइल में कुछ मिलता है
the first 10% goes to Levi.
उसका पहला दशमांश लेवी यानी याजक के पास जाता है.
Because they should have been the spiritual leaders of the nation.
क्योंकि वे लोग वो आत्मिक नेता हैं इज़राइल के इसीलिए.
And so tithing goes from the lesser to the greater.
और यहाँ पे इसलिए दशमांश जो निचले हिस्सों से नीचे से ऊपर को दिया जाता है.
So they were to provide for Levi so that he didn't have to work.
इसीलिए ये लोग लेवियों को देते थे ताकि उनको कुछ काम करना नहीं पड़ेगा.
And we see Abraham giving tithes to Melchizedek.
और यहाँ पे हम देखते हैं इब्राहिम मलकीसेदक को दशमांश दिया.
So Melchizedek blesses Abraham, showing he is greater than Abraham.
और मलकीसेदक इब्राहिम को आशीष दिया यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि मलकीसेदक बड़ा है.
And Abraham gives tithes to Melchizedek, recognizing that Melchizedek is greater than he is.
और इब्राहिम मलकीसेदेक को दसमान दिया, ये बताया जाता है कि इब्राहिम छोटा है और मलकीसेदेक उससे बड़ा है.
That's all we know of Melchizedek.
और ये हम जानते हैं मलकीसेदेक के बारे में.
You don't read him anywhere else in the New Testament except for Psalm 110.
और भजन संहिता 110 को छोड़कर कहीं पर भी ऐसा नहीं देखते हैं मलकीसेदेक के बारे में.
We've quoted this before, but the writer of Hebrews keeps going with it.
और जब हम इब्रानियों को पढ़ रहे थे, तभी हम ये भाग को हम पढ़े थे.
Someone turn and read Psalm 110.
और कोई भजन संहिता 110 को निकाले.
Verse 4.
और उसका चौथा आयत.
यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मेलकीसेदेक की विधि पर सर्वदा का याजक है, प्रभु तेरी दाहिने ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को जूर कर देगा, वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा, भूमि सवों से भर जाएगी, वह लंबे चौड़े देश.
Only four. सुना कीजिए, only four. Thank you.
In the Old Testament,
और पुराने नियम में,
the passage in Genesis 14,
और ये जो उत्पत्ति 14 अध्याय है,
and this verse in Psalm 110,
और ये वचन संहिता 110,
is the total of what we have about Melchizedek.
यही है हम जो मलकीसेदेक के बारे में जानते हैं.
You can understand why the Jews wouldn't have thought much about it.
और आप समझ सकते हैं कि यहूदी लोग इसके बारे में ज्यादा यानी समझ बुझ विचार नहीं क्यों किए.
But what they didn't realize was that God was doing that on purpose.
और लेकिन ये वो समझ नहीं सके कि परमेश्वर उनके लिए क्या कर रहे हैं इसके जरिए.
Now in a few moments we're going to go through and we're going to talk about some of the things we know.
और कुछ समय के बाद हम ये विचार करेंगे, विमर्श करेंगे क्या-क्या ये इसके जीवन में है.
And exactly the argument that the writer of Hebrews is giving us.
और यहाँ पे जो तर्क हो रहा था, जो हो रहा है, जो इब्रानियों के लेखक हमें दे रहे हैं.
But I want you to look at verse 3 of Hebrews chapter 7.
और लेकिन मैं चाहूँगा कि इब्रानी वो 7 का 3 पद को देखे.
Without father, without mother.
लिखा जाता है पिता के बिना और माता के बिना.
Without pedigree.
और लोगों के बिना, पुरखों के बिना.
Having neither beginning of days nor end of life.
It's 3, no?
Yep.
Yeah. जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसने ना दिनों को आदि है.
But made like unto the Son of God.
परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा कर.
Abideth a priest continually.
वो सदा के लिए याजक बना रहता है.
Now I want you to really understand this.
और मैं चाहूँगा आप इसे सही तरीके से समझे.
That line where it says, "But made like unto the Son of God."
लेकिन यहाँ पे जो लिखा जाता है कि वो सदा के लिए याजक बना रहता है.
That is the critical portion of this whole passage.
और यहाँ पे ये पूरे जो शास्त्रांश है, उसका ये सही यानी गुरुत्वपूर्ण चीज है.
It doesn't mean that he had a virgin birth.
और इसका मतलब नहीं है कि वो ये एक कुमारी से जन्म.
It doesn't mean that he didn't die.
और इसका मतलब नहीं कि वो नहीं मरा.
It doesn't mean that he became divine.
और इसका मतलब नहीं है कि वो स्वर्गीय नहीं है.
It means that God made his picture in a certain way.
इसका मतलब यही है, परमेश्वर एक विशेष रूप में एक छवि बना रहे हैं उनके लिए.
And he left out all sorts of information from his picture.
और उनके छवि के जरिए बहुत सारे ऐसे चीजों को वो दिए जो हम सीख पाएंगे.
So that he would look like Christ.
जैसे वो यीशु की तरह दिखे.
So that Christ would have a priesthood.
जैसे मसीह के लिए याजकत्व रहे.
And it would be an eternal priesthood.
और ये अनंतकालीन का हो.
So when people ask, well, who was Melchizedek?
जब इसीलिए लोग पूछते हैं कि कौन मलकीसेदक है?
Restrict yourself to what the Bible teaches us.
और बाइबल जो सिखाता है उससे ऊपर नहीं जाइए कभी.
It's very important that we do so.
और हमें ये चीज को जानना है, जरूरी है.
Notice the beginning of verse 4.
और ये चौथा पद जो आरंभ हो रहा है, हम उसे देखें.
We'll get to the whole verse 4 in the next section, but notice, now consider how great this man was.
अब इस पर ध्यान करो कि वो कैसा महान था.
Melchizedek was a man.
और मलकीसदक जो एक एक इंसान था,
he was a man like me,
और मेरे जैसे हमारे जैसे इंसान ही थे,
a man like any other person here,
और यहाँ पे जितने लोग हैं सभी के जैसा वो एक इंसान ही थे.
God chose,
परमेश्वर ने उनको चुना,
to leave out information,
और कुछ उनके जीवन के जरिए कुछ हम सीख पाए,
so that Melchizedek would reflect Christ,
जैसे मलकीसदक वो यीशु को दर्शाए, यीशु को दिखाए.
You remember Moses.
आप मूसा को याद करें.
When Israel needed water in the wilderness.
और जब इजराइली वो वहाँ पे wilderness में उनको जब पानी का कमी घटी आई.
And God tells them to take a staff and strike the rock.
और परमेश्वर ने कहा एक छड़ी लेके वो पत्थर को मारने के लिए.
And water flows forth.
और जब वो मारा तो पानी उधर से निकला.
That was a picture of Christ.
और वो मसीह का ही छवि था.
It was picturing the crucifixion.
और ये क्रूस का छवि को दिखा रहा था.
So that Jesus would be the water of life.
जैसे यीशु मसीह वो जीवन का जल हो सकते हैं उसी तरह.
So that later on,
और बाद में क्या हुआ?
When they needed water again,
और जब उनको और एक बार उनको प्यास लगा और पानी उनको जीवन में उनको जरूरत हुआ,
God said to Moses, "Speak to the rock."
परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अभी मारो मत लेकिन आज्ञा दो.
Because now you've already have the Savior. The cross has already been pictured.
क्योंकि अभी तुम्हारे पास वो उद्धारकर्ता आ गए हैं और वो तुम्हें वो एक छवि के जरिए वो क्रूसिफिकेशन को दिखा रहा है.
You're not going to crucify him again.
और एक बार उनको आप क्रूस पर लटका नहीं सकते.
So speak to the rock and he'll intercede for you.
इसीलिए पत्थर को आज्ञा दो और वो तुम्हारे लिए पानी निकालेगा.
And he'll give you the water you need.
और वो आपकी जरूरत की पानी आपको देगा.
What did Moses do?
लेकिन मूसा ने क्या किया?
Because he was angry with the people.
वो लोगों के साथ वो यानी वो गुस्सा हो गया था उनके बीच में इसीलिए.
Instead of speaking to the rock.
और वो पत्थर से पत्थर को आज्ञा देने से पहले वो क्या किया पत्थर को?
Takes his staff and hits it twice.
वो छड़ी लिया दो बार मारा.
And God is angry with Moses.
इसीलिए परमेश्वर ने मूसा के ऊपर क्रोध किया.
It's just a rock, right?
और ये एक पत्थर था, खाली पत्थर था.
But what Moses has done is he spoiled the picture.
लेकिन एक छवि को मूसा ने क्या पूरा पूरी तोड़ दिया.
He spoiled the image of Christ.
वो मसीह के छवि को तोड़ दिया वो.
The first time was to picture the crucifixion.
और पहला जो बोला गया था पत्थर को मारने के लिए ये क्रूस उसका छवि को दिखाता है.
The second time was to picture his intercession for us as priests.
और दूसरी बार जो पत्थर आया और प्यास लगा वहाँ पे परमेश्वर ने जो बोला ये मध्यस्थी प्रार्थना को दिखाता है.
So when Moses strikes the rock the second time,
और जब दूसरी बार मूसा ने पत्थर को मारा,
he loses his reward of the promised land.
वो प्रतिज्ञा देश में जाने का वो रिवॉर्ड को खो दिया.
Because he spoiled the time.
क्योंकि अब वो उस चीज को खो दिया.
He spoiled the picture.
वो छवि को तोड़ दिया.
And so we need to understand that when we look at Melchizedek in these verses.
और इसीलिए हमको समझना है कि मलकीसदक के बारे में भी
God purposely paints a picture in a certain way.
और परमेश्वर एक स्वरूप दिखाकर मलकीसदक के स्वरूप में दिखाकर यीशु को दिखा रहे हैं हमें समझना है.
So let's look at verse 1.
इसलिए एक पद को हम लोग देखेंगे.
For this Melchizedek, king of Salem.
और यहाँ पे लिखा जाता है ये मलकीसदक सालेम का राजा.
What does Melchizedek mean?
और मलकीसदक ये शब्द का अर्थ क्या है?
It means king of righteousness.
इसका मतलब धार्मिकता का राजा.
It's not a coincidence that his name is Melchizedek.
ये एक ऐसे ही नहीं हुआ, लेकिन उसका नाम ऐसे मलकीसदक नहीं हो गया.
It's not a coincidence that he's a king and a priest.
ऐसे ही नहीं हुआ कि एक राजा भी है और एक याजक भी वो है.
Because he is reflecting who is the true king and the true priest.
क्योंकि वो जो सच्चा राजा कौन है और सच्चा याजक कौन है उसको ही वो दिखा रहा है.
We could turn to many many scriptures.
और हम लोग बहुत सारे ऐसे शास्त्रांशों को निकाल सकते हैं.
But I think just a few will do.
और लेकिन हम कुछ और निकालेंगे.
Someone read Isaiah chapter 9 verse 6.
यशायाह उसका 9 अध्याय 6 पद को हम देखेंगे.
କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ ପିତା ଶାନ୍ତି ରାଜା ହେବ.
Someone else read Jeremiah 23 verse 5.
କୋଇ ଇରମିଆ ଉସକା 23 କା 23:5
23:5
23 କା 5 ପଢେ.
Melchizedek means king of righteousness.
और मलकीसेदेक ये शब्द का अर्थ है कि धार्मिकता का राजा.
And he's actually the king of Salem.
लेकिन वो सही में वो सालेम का राजा है.
The Hebrew word Salem is actually Shalom.
और ये सालेम जो उसका जो इब्रानी वो शब्द है वो उसका नाम है सालोम.
So he is king of peace.
उसका मतलब वो शांति का राजा.
He's king of righteousness and he's king of peace.
वो धार्मिकता का भी राजा है और वो शांति का भी राजा है.
And as king, he is priest to the Most High God.
और राजा के हिसाब से वो परमेश्वर के लिए याजक है.
And as Jeremiah tells us in chapter 23,
और जैसे यिर्मयाह उसका 23 अध्याय में बताते हैं,
who is the branch?
और कौन वो अंकुर है?
Who is the seed of David?
और वो दाऊद के वंश कौन है?
Who is the seed of Abraham?
और इब्राहिम के वंश कौन है?
He is the Lord our righteousness.
और वो हमारा प्रभु धार्मिकता का प्रभु.
He is our righteousness.
वो हमारा धार्मिकता है.
He is the king of righteousness.
वो धार्मिकता का राजा है.
As we're told in Isaiah 9,
जैसे यशायाह 9 में हमें कहा गया,
He is the prince of peace.
वो शांति का राजकुमार.
That doesn't mean that he's waiting to become king of peace.
इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपेक्षा करने पड़ेगा शांति का राजकुमार होने के लिए.
That means that he is prince over all things. This is the prince that we go to.
और लेकिन ये सबके ऊपर सबके लिए शांति का राजा है जिसके और हमें
So back in Hebrews chapter 7,
और हम इब्रानी 7 अध्याय फिर से हम लौटेंगे.
What we find is that Melchizedek, he is the perfect picture of Christ.
जहाँ पे हमें मिलेगा कि मलकीसेदक जो सही में यीशु के एक छवि हैं.
Because he is the king of righteousness.
क्योंकि वो धार्मिकता का राजा हैं.
Because he is the king of peace.
और शांति का राजा हैं.
That's the place where Melchizedek dwells.
और यही वो जगह है जहां पे मलकीसेदेक का वो जगह सीखने का जगह.
But our king,
लेकिन हमारा राजा
is better.
सबसे बढ़िया.
Because our king not only possesses righteousness,
क्योंकि हमारे राजा वो अपने धार्मिकता को नहीं पकड़ते खाली.
He's able to impart righteousness.
वो धार्मिकता को देते भी हैं सबके ऊपर.
He's able to give righteousness.
वो आपको देने में सक्षम है धार्मिकता.
Because he was made a little lower than the angels.
क्योंकि वो स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे किए गए.
Not only is there peace where he dwells,
वो शांति में रहते हैं ये खाली नहीं है.
He is able to give peace with God.
वो परमेश्वर का शांति आपको देने में सक्षम है.
Because he was made a little lower than the angels.
क्योंकि वो स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे किए गए.
So Melchizedek is the king of righteousness and the king of Salem and priest to the Most High God.
और इसीलिए मलकीसेदेक जो है वो धार्मिकता का राजा और शांति का राजा और परमेश्वर के लिए याजक ठहरे.
And he comes out to meet Abraham.
और वो इब्राहिम को मिलने आए.
And he feeds him.
और उनको खिलाए.
And he blesses him.
और उनको वो आशीष दिए.
And what happens in verse 3?
और 3 आयत में क्या लिखा जाता है, क्या हुआ?
God is painting our picture.
और परमेश्वर हमारा एक छवि को यहाँ पे ला रहे हैं.
When he says, without father, without mother, without pedigree.
और जहाँ पे वो कहते हैं जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है.
He's not saying that Melchizedek just spontaneously existed.
उसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि मलकीसेदेक ऐसे ही आ गए, उनका नाम पिता ना माता, ऐसा नहीं है.
Every single person that's ever been born has a mother and a father.
यहाँ पे जो भी व्यक्ति जन्म लेते हैं सबका एक माता और पिता है.
The only two who didn't are Adam and Eve.
और उनका एक दो व्यक्ति हैं जिनका नहीं, वो खाली आदम और हव्वा.
Our Lord had a mother.
हमारा प्रभु का एक माँ थे.
Who was Mary.
जो जिनको हम मरियम बोलते हैं.
And a father who is God.
और एक पिता जो परमेश्वर पिता.
Every man, woman, child that has ever been born has a mother and a father.
हर एक इंसान जो बच्चा हो बुढ़ा जो भी है यहाँ पे जन्म लेते हैं सबका के माता और पिता होते हैं.
And we're not going to talk about what science does, but there's still the seed of the man and there's still the egg of the woman.
और विज्ञान क्या कहते हैं हम नहीं जाएंगे आगे, लेकिन
seed of the man and the egg of the woman.
और इंसान का बीज और स्त्रियों का जो एग होता है.
He is telling us that God has left out that information on purpose.
और परमेश्वर यहाँ पे लिखा जाता है परमेश्वर कुछ ही कारण के लिए ही वो सारी इंफॉर्मेशन को नहीं दिए मलकीसदक के बारे में.
He's also left out how old he was when Abraham meets him.
और वहाँ पे ऐसे लिखा भी नहीं गया कि जब वो इब्राहिम से मिला मलकीसदक उसका आयु क्या था.
He never tells us how long Melchizedek lives.
और वहाँ पे लिखा भी नहीं गया परमेश्वर ने नहीं कहा कि मलकीसदक कितना साल जिंदा रहे.
Because he's making the picture to look like Christ.
क्योंकि वो यीशु के लिए छवि को बना रहे थे मलकीसदक के जरिए.
Because the priesthood of Melchizedek has to be different than the priesthood of Aaron.
और क्योंकि मलकीसदक जो याजकत्व वो हारून की याजक से वो बड़ा है भिन्न था.
When you look at the last line of verse 3, that's exactly what he means.
और तीन आयत का जो शेष भाग को देखते हैं वहां पे यही लिखा जाता है.
How can you say when the priesthood of Melchizedek started?
और कैसे आप कह सकते हैं कि मलकीसदक का याजकत्व वो शुरू हुआ?
How can you say when the priesthood of Melchizedek ended?
और कैसे वो खत्म हुआ आप कैसे जान सकते हैं?
We have not that ability.
और हमारे पास वही योग्यता नहीं है.
Because God has purposely left the information out.
क्योंकि परमेश्वर कुछ कारण के लिए वो सारे इंफॉर्मेशन हमें नहीं दिए हैं.
Melchizedek is a man.
मलकीसदक एक इंसान ही है.
He was born.
वो जन्म लिए.
But God didn't want us to know who his parents were.
लेकिन परमेश्वर हमें ये नहीं बताए उनके माता-पिता कौन हैं.
At some point, Melchizedek died.
और कहीं पे मलकीसदक मरे भी हैं.
Unless God took them to heaven straight away.
परमेश्वर उनको हो सकता है वो स्वर्ग ले लिए.
We have no idea either way.
और हमारे पास ऐसा कोई भी यानी जानने का तरीका नहीं है उनके लिए.
I've read a lot of books about him.
और मैं उनके बारे में बहुत सारी किताबों को पढ़ा.
And people will come up with all sorts of speculations.
और लोग अपने अपने ध्यान से अपने अपने चिंताओं से बहुत सारी चीजों को लिखे हैं.
They'll say, oh, Melchizedek was this person or Melchizedek was that person.
किसी ने कहा मलकीसदक ऐसा व्यक्ति वो व्यक्ति और किसी ने ऐसा व्यक्ति वो व्यक्ति कहा.
Melchizedek is still alive somewhere on the earth.
और कोई कहता है कि मलकीसदक अभी भी जिंदा है पृथ्वी में.
Melchizedek was translated and he's now interceding for people in heaven.
और किसी ने कहा कि मलकीसदक ऐसे ही उठा लिए गए और अभी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं.
What does the Bible tell us?
लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है?
It tells us he was a man.
और ये बताती है कि वो एक इंसान है.
It tells us he was a priest.
और वो हमें कहता है कि वो एक याजक हैं.
It tells us that he was greater than Abraham.
और कहता है कि इब्राहिम से बड़े हैं.
And it leaves it alone.
और वो अकेला हैं.
And so should we.
Pardon?
And so should we.
और उसी हिसाब से हमको भी जानना है.
There's no prophet to try and figure out when he died.
और ये वहां पे कुछ हमको फायदा नहीं मिलेगा कि मलकीसदक कब जिंदा हुए कब मरे ये जानने से.
Or was he translated into heaven?
और वो स्वर्ग में कैसे उठाए गए बोल के.
If God thought we needed to know, he would have told us.
अगर परमेश्वर का वो मानना था परमेश्वर को चाहिए था कि अगर वो हम जाने तो पक्का हमें देता.
But he wanted it to be the perfect picture of Christ.
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु को जाने और यीशु का एक छवि को मलकीसदक के जीवन में दिखा रहा है.
Remember the punishment that God that the punishment, the loss of reward for Moses for spoiling the picture.
और देखिए कैसे मूसा को दंड मिला जैसे वो परमेश्वर की छवि को तोड़ दिया.
The priesthood of Melchizedek is to reflect the priesthood of Jesus Christ.
और मलकीसदक का जो याजकत्व था वो यीशु की याजकत्व को वो दिखाता है.
Because when Jesus is our high priest,
यीशु मसीह जो हमारे महायाजक हैं,
we need to know it never ends.
हमें ये जानना जरूरी है कि वो कभी खत्म नहीं होने वाला याजक पद है.
We need to know it's greater than the priesthood of Aaron.
और हमें ये जानना है कि वो हारून के याजक पद से कहीं बड़ा है.
Throughout the rest of the chapter, he's going to start to detail why it's greater than the priesthood of Aaron.
और यहाँ से नीचे हम जब देखेंगे, यहाँ पे वो लिखा जाता है क्यों ये बड़ा है बोलके.
But this is the important thing to remember.
लेकिन ये चीज़ को हम ध्यान में रखे हैं.
He is not a priest forever.
वो हमेशा के लिए वो याजक नहीं रहे.
Otherwise, Christ wouldn't be a priest.
इसीलिए तब वो इस क्योंकि अगर वो please repeat once again.
Otherwise, Christ wouldn't be a priest.
तो यीशु मसीह नहीं तो याजक नहीं बन पाते.
Christ is a priest after the order of Melchizedek.
यीशु मसीह मलकीसदक के रीति में याजक है.
He is not a priest after Melchizedek.
वो मलकीसदक के बाद याजक नहीं बने.
Melchizedek We're not told about his death.
और यहाँ पे मलकीसदक की मृत्यु के बारे में बताया नहीं गया.
He didn't pass on the priesthood to Christ.
और वो अपने याजक पद को यीशु मसीह को नहीं दिए.
He is a priest after the order of Melchizedek.
और यीशु मसीह जो याजक हैं, वो मलकीसदक के रीति में याजक हैं.
A priest who has no beginning and has no ending.
एक याजक जिसका शुरुआत नहीं और जिसका अंत भी नहीं है.
A priest who is greater than Abraham and the Levitical priesthood.
और जो याजक पद वो इब्राहिम से ही बड़ा है.
That's the picture that God wants us to see.
और यही छवि परमेश्वर चाहता है कि हम देखें.
And we need to make sure that we stay within those bounds.
और हमें ये जानना जरूरी है कि हमें ये बाउंड्री में अंदर हमें रहना है.
Because otherwise we spoil the picture of Christ.
नहीं तो हम मूसा ने जैसे वो परमेश्वर की छवि को तोड़ा हो सकता है, हम भी तोड़ सकते हैं.
Because he is the king of righteousness.
क्योंकि वो धार्मिकता का राजा है.
He is the king of peace.
अब वो शांति का राजा है.
And he is our great high priest.
और वो हमारा प्रधान महायाजक है.
And as he'll tell us later on, he ever lives to make intercession for us.
और वो जैसे नीचे पढ़े कि वो अभी भी है कि हमारे लिए मध्यस्थी प्रार्थना कर रहे हैं वो.
Because as it was for Melchizedek, so it is for Christ.
और जैसे मलकीसदक की रीति में उसी तरह यीशु के लिए भी.
We're told of no ending to Melchizedek's priesthood.
आज हमें कहा नहीं गया कि मलकीसदक का याजकपद कहां पे खत्म हुआ.
So that we know there is no ending to Christ's priesthood.
इसलिए हम जानते हैं कि यीशु मसीह का याजक पद भी कहां पे खत्म नहीं होता.
Melchizedek was eventually going to die or taken to heaven.
और हो सकता है मलकीसदक मर गया और नहीं तो स्वर्ग में उठाया गया.
We know because we have Christ.
क्यों ये कैसे हम जानते हैं? क्योंकि हमारे लिए मसीह हैं.
Because we have need of no other priest.
क्योंकि हमें और कोई याजक का जरूरत नहीं है.
So keep your mind within those things.
और ये सारे चीजों को आप अपने दिमाग में रखें.
And you'll do well.
और आप अच्छा करेंगे.
Let's go ahead on and read verses 4
through
10.
और 4 से 10 तक हम पढ़ेंगे इब्रानी 7.
अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दसवां अंश दिया. लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से चाहे वे अब्राहम की देह से क्यों ना जन्मे हों व्यवस्था के अनुसार दसवां अंश ले. पर इसने जो उनके वंशावली में कहा भी ना था अब्राहम से दसवां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञान मिली थी उसे आशीष दी. इनमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है. जो तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दसवां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा दसवां अंश दिया क्योंकि जिस समय मलकीसदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था. यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती जिसके सारे लोगों की को व्यवस्था मिली थी तो फिर क्या आ सकता थी कि दूसरा याजक मलकीसदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति न कहलाए.
Okay, thank you.
That's Notice he begins with now consider.
और यहाँ पे आप ध्यान कीजिए कि वो कैसे शुरू करें पहले इस पर ध्यान दे.
I want you to think about the consequences of what I've just told you.
इससे अभी जो मैं आपको कहा अगर हम ध्यान नहीं देंगे उसके परिणाम को आप याद करें.
That's what the writer of Hebrews is saying.
और ये इब्रानियों के लेखक हमें बताना चाहते हैं.
Let's see how great this Melchizedek was.
और देखिए ये मलकीसदक कितना महान था.
Abraham gave him a tithe.
इब्राहिम उनको दशमांश दे रहे हैं.
Abraham acknowledged Melchizedek as greater than himself.
और इब्राहिम ये जान लिए कि वो मलकीसदक वो उससे भी मलकीसदक बड़े हैं.
Remember the attitude of the Jews.
और यहूदियों को परंपरा उनके व्यवहार को हमको जानना जरूरी है.
What did they say to Jesus?
और यीशु को लोग क्या कहे?
We have Abraham as our father.
और वो कहे कि इब्राहिम हमारे वो पिता हैं.
He's the head of the Jewish nation.
और वो यहूदियों का प्रधान हैं.
He is the father of the faithful in Galatians.
और विश्वासियों के पिता हैं वो.
And we even talked about yesterday yesterday that we are the seed of Abraham through Christ.
और कल हम ये बात भी किए कि यीशु के जरिए हम अब्राहम के वंश भी हैं.
But Abraham is recognizing Melchizedek as greater.
लेकिन यहाँ पे इब्राहिम मलकीसदक को बड़ा बना रहे हैं.
And Melchizedek is recognizing Abraham as lesser.
और मलकीसदक यहाँ पे इब्राहिम को छोटा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं.
That would have been so challenging for them to understand.
ये समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है.
Melchizedek is greater than Abraham.
और मलकीसदक जो है वो इब्राहिम से बड़े ही हैं.
He gives of the spoils of the war.
और वो जो युद्ध में जो जीते थे इब्राहिम, उससे सारे दशमांश को उनको दिए.
He gives a tenth to him.
और उनको दशमांश दिए.
And the writer of Hebrews says, now really get your minds wrapped around this.
और इब्राहिमियों के लेखक जो अभी कहते हैं, ये सही में आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा.
And he uses an argument that is a bit of a challenge to understand.
और वो एक ऐसे चैलेंज को लाते हैं जो हमें समझने के लिए थोड़ा कष्ट होगा.
He says to us that even though he hadn't been born yet.
और वो कह रहे हैं कि वो अभी तक जो जन्म नहीं हुए हैं.
Even though he was Abraham's great grandson,
हो सकता है कि वो इब्राहिम के परपोता परनाती होंगे.
That Levi was paying tithes to Melchizedek,
और वो जो लेवी जो मलकीसदक को दशमांश दे रहे हैं,
because he is from Abraham,
क्योंकि वो इब्राहिम से हैं.
So, what does that exactly mean?
और इसका मतलब क्या है?
It's the same thing that happens to us with imputation.
और ये हमारे साथ भी ऐसे होता है.
We have sin imputed to us through Adam.
और आदम से हमारे जीवन में पाप आया है.
We are born sinners because we have inherited that from our father Adam.
हम जन्म से पापी हैं क्योंकि हमारा जो पिता आदम, वहां से हमारा वो पाप हमारे जीवन में आया.
Adam gave it to every child born of Eve.
और आदम ने सब चीजों को दे दिया ईव के.
And every other child ever since has received it.
और अब तक जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब ये पाप को लेते ही लेके ही पैदा हो रहे हैं.
He was our representative.
और वो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहा है.
And because he was our representative, we all look to Adam as our father.
और वो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमें आदम को, सब लोग आदम को ही पिता बोलना चाहिए.
What he did, we did.
और वो जो किया हमें वो करना चाहिए.
Now, we rejoice because we have a second Adam.
लेकिन हमें ये आनंदित होना है कि हमारे पास एक दूसरा आदम भी है.
We have the last Adam.
और जो शेष आदम कहलाते हैं.
We spoke about this before.
और ये कुछ दिनों से पहले हमने बात किए थे.
We're not going to turn there now, but you can look in Romans 5 and 1 Corinthians 15.
और हम ये शास्त्रांश को नहीं लिखेंगे, परंतु रोमी 5 और पहला कुरिन्थी 15 को हम देख सकते हैं.
There have only been two representative heads for mankind.
और इंसानों के लिए दो प्रतिनिधित्व हैं.
The first Adam who gave us sin.
और पहला आदम जो हमें पाप दिया.
And the second Adam who gives us righteousness through faith.
और दूसरा आदम जो हमें उसके मृत्यु के जरिए धार्मिकता तो दिया.
And notice that he's called the second Adam and the last Adam.
और यहाँ पे ध्यान दीजिए, उनको यीशु को यहाँ पे दूसरा आदम अथवा शेष आदम बोलके कहा जाता है.
There will not be a third.
और तीसरा आदम नहीं है.
And so in Adam we have sin.
और आदम के जरिए हम पाप किए.
Because we are his descendants.
क्योंकि हम उससे वंश से हैं.
He represents us.
और वो हमें प्रतिनिधित्व करते हैं.
In Jesus Christ we have righteousness.
और यीशु के जरिए हमें धार्मिकता मिला.
Because by faith we are his brethren.
क्योंकि हम विश्वास के जरिए हम उसके भाई हैं.
He is pleased to call us his brethren.
और वो उन्हें खुशी होता है कि हमें भाई बुलाएं.
You remember what we talked about in Hebrews 2?
और इब्रानी 2 में हम जो पढ़ रहे थे उसे याद करें.
We have inherited his righteousness.
और हमें वो अधिकार मिला है उसके धार्मिकता का.
It has been imputed to us.
और ये हमारे जीवन में दिया गया है.
Those are the words that Paul uses in 2 Corinthians 5.
और दूसरा कुरिन्थी 5 में पौलुस जो वो कहता है.
And that's exactly what the writer of Hebrews is talking about when he's talking about Abraham, Melchizedek and Levi.
और यहाँ पे वही चीज पौलुस दोहरा रहा है और कह रहा है यहाँ पे, जो कह रहा है कि मलकीसदक इब्राहिम और लेवियों के गोत्र के बारे में.
He says because Melchizedek is greater than Abraham.
वो यहाँ पे कहता है कि क्योंकि मलकीसदक बड़ा है इब्राहिम से.
And that's obvious because Abraham paid tithes to Melchizedek.
और इसलिए इब्राहिम यहाँ पे मलकीसदक को दशमांश दिया.
That by imputation Abraham is the father of Israel.
और जैसे इब्राहिम इज़राइल का प्रतिनिधित्व करते हैं.
Therefore Levi has paid tithes to Melchizedek.
इसीलिए लेवी मलकीसेदक को दशमांश दिए बोल के कहते हैं.
And that's why Jesus could not be a priest after the order of Levi or after the order of Aaron.
इसीलिए यीशु मसीह लेवियों के रीति के अनुसार और हारून के रीति के अनुसार वो याजक नहीं बने परंतु मलकीसेदक की रीति के अनुसार याजक बने.
If he was a priest after the order of Aaron,
अगर वो हारून की रीति के अनुसार याजक बनते,
then Abraham would be greater than Christ.
तभी इब्राहिम बड़ा बन जाता.
Then Melchizedek would be greater than Christ.
और मलकीसेदक बड़ा बन जाते यीशु से.
Do you understand that?
आप समझ रहे हैं?
Do you see how it works?
कैसे ये काम कर रहा है?
Because of the way that the imputation works, Levi pays tithes.
और जैसे ये उनके जीवन पर आया और लेवी दशमांश दे रहा है.
So Melchizedek is greater.
और इसलिए मलकीसेदक बड़ा.
If Jesus was of the tribe of Levi,
और यीशु मसीह अगर लेवी के गोत्र से आते हैं,
then he would have paid tithes to Melchizedek as well.
और वो भी मलकीसेदक को दशमांश देते.
And he couldn't have been a priest after the order of Melchizedek.
और तभी वो मलकीसेदक के रीति में याजक नहीं बन पाते.
But we know now that the priesthood of Melchizedek is greater than that of Levi.
और लेकिन हम जानते हैं लेवी के गोत्र के लेवी की रीति के अनुसार उससे भी बेहतर मलकीसेदक का याजक पद था.
He is above.
अब वो सबसे परे.
And he wants us to understand that because of that, Jesus has this picture of Melchizedek for us.
और इसीलिए हमें समझना जरूरी है कि यीशु मसीह जो एक छवि है. सॉरी मलकीसेदक की छवि है यीशु मसीह के.
That's why there is so much limited information about him.
इसीलिए मलकीसेदक के बारे में बहुत ही कम विषय में लिखा गया.
So we don't get lost in, well, what if that and what if this.
इसीलिए हमें नहीं ढूंढना चाहिए कि ये इधर कहाँ है उधर कहाँ ये कहाँ पे लिखा है.
We need to know he was greater.
हमें जानना है कि बड़े हैं महान हैं.
He was king and he was priest.
वो राजा है और वो याजक है.
He was king of righteousness and king of peace.
वो धार्मिकता का राजा है और शांति.
And he's a priest with no beginning and no ending.
और वो ऐसा याजक है जिनका शुरुआत का पता नहीं और अंत का भी पता नहीं.
So that when God says in Psalm 110 verse 4,
और जैसे भजन संहिता में परमेश्वर ने 110 में कहा उसका चार आयत में,
that you are a priest forever after the order of Melchizedek.
और इसीलिए वो कहा कि तुम मलकीसेदक के रीति में अनंत कालीन याजक हो.
We know that he is combining the kingship.
और हमें ये जानना जरूरी है कि वो उसके राजा होने की चीज को वो संजोग कर रहे हैं.
And the peace.
और याजक को भी.
And the righteousness.
और धार्मिकता को भी.
And the priesthood.
और याजक तो भी.
All into one person.
और एक व्यक्ति के जीवन में सब.
And he is above Levi.
और वो लेवियों से भी बड़े हैं.
Not only does it tell us this,
और परमेश्वर यही खाली हमको नहीं कहना चाहता.
You can think of it this way,
और आप ऐसे भी सोचते हैं, सोच पाएंगे.
Why did Jesus have to have a virgin birth?
क्यों यीशु मसीह को एक कुमारी से जन्म लेना पड़ा?
Because it was necessary.
क्योंकि ये जरूरी था.
But why was it necessary?
पर क्यों जरूरी था?
This is the same imputation that we've talked of.
और ये वही चीज है जो हम बात की पहले.
Adam sinned.
आदम पाप किया.
He's our representative head.
वो हमारे प्रतिनिधित्व करता है पाप के बारे में.
Paul tells us in Romans, because of the sin of one man, sin passed to all.
पौलुस कहता है रोमी की पत्री में कि एक इंसान पाप किया उसके जरिए पाप आया दुनिया में.
But Jesus wasn't born of man.
इसीलिए यीशु मसीह इंसान के द्वारा जरिए जन्म नहीं लिए.
He was born of Mary.
वो वर्जिन यानी कुमारी से जन्म लिए.
Therefore there was no seed of the man.
इसीलिए जो इंसान का जो वंश जो बीज होता है वो वहां पे नहीं था.
So the seed of sin was not passed to our savior.
इसीलिए पाप का जो बीज वो हमारे उद्धारकर्ता के जीवन में नहीं आया.
And keep this in mind.
ये हमें याद रखना है.
Judah was the brother of Levi.
और यहूदा जो है वो लेवी का भाई था.
In a sense, because of that, you'd say, "Oh, well, Jesus then paid tithes in Judah."
और ऐसे हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह यहूदा को दशमांश देते.
Melchizedek as king was greater than Judah.
और मलकीसेदक जो राजा वो यहूदा से ही बड़ा है.
Because Judah paid tithes in Abraham to Melchizedek.
और क्योंकि यहूदा अब्राहम के जरिए मलकीसेदक को दशमांश दे रहे हैं.
But Jesus was born of Mary.
इसलिए यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिए.
He is rightfully king.
वो सही में राजा.
but he did not receive that kingship through an earthly father.
लेकिन वो राजा होने का पद कोई इंसानी पिता से ग्रहण नहीं किए.
And so although he's born of the tribe of Judah,
और इसलिए जो यहूदा गोत्र में जो जन्म लिए,
neither through Levi nor Judah did Jesus ever pay tithes to Melchizedek.
और इसीलिए कभी यीशु मसीह और यहूदा के गोत्र के जरिए, लेवी के गोत्र के जरिए, इब्राहिम के जरिए वो मलकीसेदेक को दशमांश नहीं दिए.
The scripture is consistent.
और ये वचन सही रीति से हमें बताता है.
Christ is born of Mary so that there is no transmission of sin and no transmission of being below anyone.
और यीशु मसीह कुमारी से जन्म लिए जैसे पाप का कोई सम्मिश्रण नहीं आएगा.
He was made lower than the angels.
वो दूतों से थोड़ा नीचे किए गए.
But he is lower than no man.
लेकिन कोई इंसान से नीचे नहीं किए गए.
That's what it means in verse 1 of Psalm 110.
और यही भजन संहिता 110 का एक में लिखा जाता बताता है.
When David, who is the type of king,
और जो दाऊद जो वो राजा का वो एक छवि था राजा था. और जो यीशु को दिखाता था.
Says Jehovah said to my Lord.
और वो कह रहा है कि यहोवा ने कहा मेरे प्रभु को.
He's saying the one who comes after me is greater than me.
वो कह रहा है कि मेरे बाद जो आएंगे वो मेरे से भी महान हैं.
And it's because he never paid tithes to anyone.
क्योंकि वो कभी किसी को दशमांश नहीं दिए.
We need to understand these things and take them to heart.
ये हमें समझना है, हृदय में लेना है.
We're going to take a break from here. So we're going to sing a song.
हम एक गाना गाएंगे और थोड़ा ब्रेक लेंगे.
Have a quick cup of tea.
और अगर हो सकता है कि जल्दी चाय पी लीजिए.
And gather back again.
और फिर जल्दी इकट्ठे होंगे.
And then continue on.
और हम लोग शुरू करेंगे.